अध्याय दसवां। अनाज की बोरियों से लदे ट्रक के पीछे बैठकर मैं अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंचा। अप्रवासी कार्यालय की चौकी की जर्जरता उस राष्ट्र की गरीबी को दर्शा रही थी, फिर भी अप्रवासी अधिकारियों ने सहर्ष मेरा स्वागत किया, जो कि अन्य सीमा सुरक्षा अधिकारियों के व्यवहार से बहुत अलग था। अफगानिस्तान में मेरा पहला पड़ाव हैरात था। यहाँ के लोग सुंदर और मैत्रीपूर्ण थे। कठोर रेगिस्तान में वे फटे पुराने मटमैले कपड़े पहने टूटे फूटे घरों में रहते। यद्यपि मेरी यात्रा में मिले लोगों में ये सबसे गरीब थे, फिर भी रास्ते पर चलता हर व्यक्ति मेरी ओर देखकर मुस्कुराता और किसी ने भी मुझसे कुछ मांगा नहीं। इसके विपरीत उनके पास जो थोड़ा बहुत था वे उसे मेरे साथ बांटने के लिए तत्पर थे। हैरात में हर दिन लोगों ने मुझे अपने घर पर न्योता दिया। अधिकांशतः पूरा परिवार एक छोटे से कमरे की झोपड़ी में रहता। वे प्रसन्नतापूर्वक मुझे खाने के लिए रोटी देते। मेरे मेज़बान न तो लिख सकते थे और न ही पढ़ पाते थे, फिर भी उनमें से अनेक लोग मुझे अत्यंत भले और समझदार लगे, जो विषमताओं के बीच भी मर्यादापूर्ण जीवन जी रहे थे। भले ही हमें एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी, फिर भी हमारे हृदय परस्पर वार्तालाप कर लेते, और विशेषतः मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक था। 1970 की सर्दियों के एक दिन मैंने हैरात की एक छोटी चाय की दुकान से अपने घरवालों को एक पत्र लिखा। प्रिय माँ, पिताजी, मार्टी और लैरी, आप कैसे हैं? मैं अभी अफगानिस्तान के हैरात नगर में हूँ। इस देश का मेरा अनुभव अत्यंत रोचक है। यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव के हैं और गरीबी के बावजूद भी शांतिप्रिय हैं। मुझे मालूम है कि देर हो चुकी है, फिर भी मैं पिताजी और लैरी को उनके जन्मदिन की बधाई भेज रहा हूँ। मैं आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। प्रेम सहित, रिचर्ड। एक दिन प्रातः मैं हैरात शहर का भ्रमण करने निकल पड़ा और एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। मैं धूल भरी सड़क के किनारे खड़े होकर अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन कर रहा था। शुरुआत में मैं सब कुछ बहुत भा रहा था, मानो मैं सदियों पूर्व के एक सरलता भरे जगत में स्थानांतरित हो गया था। मेरा हृदय धड़कने लगा। एक के बाद एक अनेक ऊंट मेरे सामने से धीरे धीरे जाने लगे। वहां आधुनिक वाहनों या भोपुओं की कोई आवाज नहीं थी, केवल कच्ची सड़कों पर ऊंटों के खुरों की खटखट थी। मिट्टी के बने छोटे छोटे एक मंजिला घरों में पूरा परिवार रहता था। रेगिस्तानी धूल उड़कर मेरे सूखे मुंह में आने लगी और ऊंटों के मल और जलती लकड़ी की गंध मेरी नाक को जलाने लगी। सड़क के किनारे पारंपरिक अफगानी वेशभूषा पहने लोग उकड़ू बैठकर बातें कर रहे थे। उनके ढीले वस्त्र सलीकेदार थे, किंतु वे पुराने और फीके पड़ चुके थे। पुरुषों ने सिरों पर लंबे कपड़े की पगड़ियां बांधी हुई थी। उनके लोगों के चेहरे चेचक के गहरे धब्बों से छलनी थे। कठोर वातावरण ने उनकी त्वचा का पुराने चमड़े के समान रूखा और सख्त बना हुआ था, और उनके चेहरों पर सहजता से उभरी बड़ी मुस्कुराहटें उनकी सड़े अथवा गिर चुके दांतों को दिखा रही थी। घुटनों से नीचे लटकते ढीले कुर्ते पहने हुए ऐसी बेफिक्री से काम कर रहे थे मानो समय से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। स्त्रियों ने अपने चेहरों को पतले नकाब से ढका हुआ था और नीले या काले बुरके पहने थे। एक अंधा व्यक्ति सड़क पर बैठा ऊंचे स्वर में धार्मिक गीत गाते हुए एक डफली बजा रहा था। वातावरण ठंडा था और चूल्हों से निकलता धुआं हवा में भरा था। अचानक इस दृश्य ने मुझे भरमा दिया। मेरी आंखें धुएं से जलने लगी, मेरा सिर चकराने लगा और मतली आने लगी। मैं भ्रमित और भयभीत हो उठा। मैं अपनी पांचों इंद्रियों से जो भी देख सुन या अनुभव कर रहा था उनमें से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। निस्सहाय और अकेला मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। घबराकर मैं घुटनों के बल गिर पड़ा पसीने से भीगा मैं इस गरीब परिवेश को अपने पश्चिमी दृष्टिकोण से समझने का संघर्ष करने लगा, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने स्वयं को इस दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ पाया। भले ही ये घोर गरीबी हृदय विदारक थी, फिर भी हैरात के निवासी मुझे अब तक मिले लोगों में सर्वाधिक प्रसन्नचित्त और बेफिक्र लगे। गरीबी और प्रसन्नता के इस विचित्र मेल को देखकर मेरी बुद्धि चकरा गई। सड़क के किनारे वृद्ध पुरुष हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे। सूखी रेगिस्तानी धूल की गंध हशीश की तीखी बांस में मिल रही थी। यहाँ के नए नए दृश्य, गंध और ध्वनियाँ मेरे इंद्रियों को व्याकुल कर रही थी। मैं एक ऐसे जगत में अकेला था जहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं स्वयं को जोड़ सकूं। एक सुंदर संसार में मैं अकेला परदेसी सड़क के किनारे हताश होकर बैठ गया। मैंने इस झंझावात से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, क्या हो रहा है मेरे साथ? इस भ्रम का कारण क्या है? मैं क्यों इतना प्रभावित हो रहा हूं? मैं अपने अस्तित्व को पाने के लिए जूझने लगा। मैंने जन्म से ही अपनी पहचान अपने आसपास के परिवेश से की थी। इस क्षण से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मेरे विचार किस सीमा तक पश्चिमी विचारधारा के अनुसार ढले हुए थे। जिस प्रकार हरे रंग का चश्मा पहनने से हम सब कुछ हरा देखते हैं, उसी प्रकार अपने परिवेश और अनुभवों के आधार पर हम सच्चाई को देखने का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण बना लेते हैं। मेरे तन और मन से ग्रहण की गई अनुभूतियों का धारणा बनकर मेरी पहचान बन गई थी। मैं स्वयं को अमेरिकी, पुरुष, गोरा इत्यादि मानने लगा था। आज वे परिचित धारणाएं मुझे एक शून्य में धकेलती हुई विलुप्त हो गई। हे भगवान, कृपया मेरी सहायता करें। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? वास्तव में कौन हूं मैं? तभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे चारों ओर का संसार अदृश्य होने लगा। मेरी प्रार्थना और ध्यान मुझे एक ऐसी स्थिति में ले गए जहां मैंने एक परम शांति का अनुभव किया। वहां मैंने एक अमूल्य सत्य को पाया, ऐसा सत्य जिसने मुझे आश्रय और मुक्ति की अनुभूति कराई। मैं एक आत्मा हूं, इस भौतिक जगत से भिन्न भगवान का अंश। सांस्कृतिक विरोधाभास की ज्वाला ने सूर्य की किरणों के समान मेरे मन में छाई हुई भ्रांतियों की धुंध को छितरा दिया। मैंने खुद को मुक्त अनुभव किया। कृतज्ञता से आप्लावित हो मैं समझ गया कि मेरे मन के मानचित्र पर हैरात सदा सदा के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में स्थित रहेगा। मैं जब भी पीछे मुड़कर उस दिन को देखता हूं तो मुझे विश्वास हो जाता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उस प्रकार से भी मिल सकता है जिसकी हमने कभी आशा नहीं होती। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी आवश्यक होता है कि हमें अंदर गहराइयों तक झकझोरा जाए। हैरात में उस दिन सड़क के किनारे घुटनों के बल झुके हुए मेरे अंदर कुछ मर गया और उसने एक ऐसे साक्षात्कार को जन्म दिया जो अपने पथ पर आगे बढ़ने हेतु मेरे लिए आवश्यक था। आगे बढ़ने के लिए ऊंट को स्थिर भूमि पर रखा अपना पैर उठाना पड़ता है और सागर तक पहुंचने के लिए नदी की हर लहर को अपनी वर्तमान स्थिति का त्याग करते हुए बहाव को समर्पित होना पड़ता है। जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे सड़क के किनारे बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। एक मोहक दंतहीन मुस्कुराहट के साथ उसने मुझे अपने साथ हुक्के पर हशीश फूंकने हेतु हाथ से इशारा किया। मुस्कुराते हुए मैंने नम्रतापूर्वक उसे मना कर दिया। उसकी संस्कृति ने पहले ही मुझमें इतना नशा भर दिया था कि मैं कभी उसे भूल नहीं सकता था। हैरात में मैं ऊंट की सवारी कर एक बस डिपो पहुंचा। वहां से मध्य अफगानिस्तान में स्थित कंधार जाने के लिए बस पकड़ी। वो जर्जर बस गरीब किसानों से भरी थी और शायद किसी को चिंता नहीं थी कि वे लोग बस का छोटा मोटा किराया भर भी रहे थे या नहीं। सीटों के बीच अनाज की बोरियां, आधा दर्जन मुर्गे मुर्गियां, दो भेड़ और एक बकरी थी। जोर से धड़धड़ाता इंजन स्त्री पुरुषों की हंसी और बच्चों के रोने की ध्वनि से अद्भुत सफर में पार्श्व संगीत दे रही थी। अचानक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बस रुक गई। एक ही क्षण में सब यात्री नीचे उतर गए। क्या यह कोई आपातकालीन परिस्थिति थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यात्रियों ने नमाज पढ़ने के लिए अपनी चटाइयों को सावधानी से रेत के ऊपर बिछाया और मक्का के पवित्र तीर्थ की ओर मुख कर अपनी नमाज अदा करने लगे। हर कुछ घंटों के अंतराल पर ये रस्म दोहराई जाती, बिना ये विचार किए कि उस समय हम कहाँ हैं। इन लोगों के लिए धर्म ही उनका जीवन था। वे मुल्ला, पादरी, योगी या साधु नहीं, अपितु साधारण गृहस्थ थे। फिर भी मैं ये देखकर प्रभावित हुआ कि उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में अल्लाह की भक्ति को सर्वोपरि रखा था। कंधार में लोगों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। हरीज नाम एक व्यक्ति ने मुझमें विशेष रुचि दिखलाई। लंबे कद के, बने ठने और शिक्षित व्यक्ति, जिन्होंने व्यापार में धन और सम्मान अर्जित किया था। व्यापार संबंधी यात्राओं और छुट्टियों में वे अक्सर विदेश भी जाते थे। कंधार का भ्रमण करवाकर उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने बड़े से घर में आमंत्रित किया। एक रात जब मैं उनकी छत पर बैठे दार्शनिक चर्चा कर रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा, श्रीमान रिचर्ड, मुझे कुछ क्षणों की अनुमति दें, मुझे एक आवश्यक कार्य करना है। अचानक वह झटके से अपनी कुर्सी से उठे और चांद की ओर मुख कर सियार की तरह आवाज निकालने लगे, आओ आओ आओ। ये क्या हो रहा था? क्या वे पागल हो गए थे? उन्होंने एक लंबी रस्सी ली जिससे एक छोर पर एक फंदा बना हुआ था और छत के किनारे पर आकर उस रस्सी को नीचे लटका दिया। वे क्या कर रहे थे? अत्यंत सावधानी से उन्होंने धीरे धीरे रस्सी को ऊपर की ओर खींचा। मैं ये देखकर दंग रह गया कि रस्सी में बिल्ली के आकार का एक रेंगने वाला जीव था। मैं हैरान से देखता रह गया। वो एक नेवला था। दिन भर वो शहर में घूमता और शाम को हरीज की आवाज सुनकर रस्सी के फंदे के सहारे ऊपर आता और उनकी छत पर रात बिताता। जब हम फिर से अपनी बातों में मशगूल हो गए तो मैंने महसूस किया कि वो नेवला मेरी पीठ पर अपने पैने नखों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। मेरे लंबे बालों को अंदर से रेंगते हुए वो मेरे सिर तक पहुंच गया। वहां उसने मेरे घने बालों में अपना बिस्तर बनाया और सो गया। उसके गर्म शरीर को अपने सिर पर गहरी सांसें भरते हुए अनुभव कर मुझे एक और झटका लगा। मैं सहायता के लिए हरीज की ओर देखा। अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त हंसने लगे, श्रीमान रिचर्ड, उसे आपके बालों में एक अच्छा घर मिला है। मुझे लग रहा था मानो मेरी गर्दन उसके वजन से टूट जाएगी। कृपया इसे यहां से हटा दें। हरीज गंभीर हो गए। सितारों से जगमगाती रात में उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और अपनी आंखें भींच कर मुझे चेतावनी दी। एक प्राचीन कहावत है, सोते हुए नेवलों को कभी जगाना नहीं चाहिए। चाय का कप मेज पर रखकर वे मुझे बताने लगे कि नेवला पुरातन मिस्रवासियों के लिए पूजनीय जीव था। क्रोधित होने पर नेवला एक हिंसक हत्यारा बन जाता है। लड़ाई में वो विषैले कोबरे को भी मार देता है। हरीज ने फिर से चाय की चुस्की ली और अपनी पीठ को टेक कर बोले, यदि आप इसे अचानक जगा देंगे तो वो आपके सिर के चिथड़े भी उड़ा सकता है। श्रीमान रिचर्ड, जब तक वो अपने आप नहीं चला जाता, आप थोड़ा सा भी मत हिलना। घंटों बीत गए। मैं डर के मारे बिना हिले डुले बैठा रहा। समय समय पर नेवला मेरी खोपड़ी में अपने पंजे गड़ाता हुआ हिल डुल रहा था। हरीज अब और जगे रहने में असमर्थ थे। काफी क्षमा याचना करते हुए वो सोने चले गए। अब मैं अकेला था। कंधार की उस अंधेरी निद्राहीन रात का तो मानो कोई अंत ही नहीं था। मेरी गर्दन पीड़ा से झंझना रही थी, लेकिन मैं इतना भयभीत था कि हिल भी नहीं रहा था। मेरे सिर पर सवार नेवला एक टाइम बम के समान था जो किसी भी क्षण फट सकता था। अपने लंबे बालों के प्रति मेरी आसक्ति बड़ी तेजी से दूर होने लगी। यदि इंग्लैंड के अप्रवासी अधिकारियों ने मेरे बाल काटने की अपनी धमकी को पूरा कर दिया होता तो आज रात मेरा जीवन कितना सुरक्षित होता। मैंने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयत्न किया। कम से कम कोई तो था जो मेरे बालों को सराह रहा था, लेकिन वो नेवला अकेला नहीं आया था। उसके साथ आए भूखे कीड़े मेरी खोपड़ी को काटते हुए मेरे इन उदार विचारों को भी कुतर रहे थे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी दुर्बलता का अनुभव करते हुए मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने लगा। फिर विचार करते हुए मैंने इस पूरे प्रसंग से कुछ सीख लेने का प्रयास किया। मैंने अनुभव किया कि हमारी सोच एक अभिशाप को आशीर्वाद में बदल सकती है और आशीर्वाद को एक अभिशाप में। हाँ, भले ही ये अत्यंत बेतुका है, किंतु हो सकता है कि मुझे धैर्य और सहनशीलता का पवित्र गुण सिखलाने के लिए इस नेवले को भेजा गया हो। विषमता को सहते हुए भगवान की ओर मुड़ना एक अमूल्य आशीर्वाद है। विपदा को प्रगति के अवसर में परिवर्तित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। शेष रात्रि कृतज्ञता की एक असामान्य दशा में बीती। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि इस नेवले ने संकटों को सहने के विषय में मुझे जो शिक्षा दी थी, वो भविष्य में आने वाले कठिन समय में मुझे शक्ति प्रदान करेगी। सूर्योदय होने तक मेरे बिन बुलाए मेहमान ने 6 घंटे की नींद का मजा उठा लिया था। वो जागा और मेरी पीठ से रेंगता हुआ जमीन पर कूद पड़ा। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उसने मेरी ओर ऐसी मासूम स्नेह भरी दृष्टि से देखा मानो वो मुझे इस अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद दे रहा हो। फिर मुड़कर वो रस्सी के फंदे में बैठ गया जिसे हरीज ने, जो अभी अभी सोकर उठे थे, नीचे गली में एक नए दिन के लिए उतार दिया। हरीज मुझे देखकर मुस्कुराए। श्रीमान रिचर्ड, आपको हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। ऐसा मेरे घर में पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि हमारी संस्कृति में बिन बुलाए मेहमान का सत्कार करना एक पुण्यकर्म माना जाता है। आपने बिना किसी औपचारिकता के हमारे नेवला मिक्स में से एक की बहुत खातिरदारी की। आज सुबह वो कितना प्रसन्न और अच्छी नींद पाकर तरोताज़ा लग रहा था। मेरी दुखती गर्दन, भारी वजन और रात भर न सोने के कारण सुन्न हो चुकी थी, फिर भी उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। क्या मैंने उन्हें नेवलों को कहते हुए सुना बहुवचन में? मैंने निर्णय किया कि मैं दोबारा उस समय के लिए नहीं रुकना चाहता था जब वो चांद की ओर मुख करके सियार की तरह फिर से आवाज निकाले, कीड़ों द्वारा काटे अपने सिर को खुजलाते हुए वहां से निकलने को आतुर हो। मैंने एक आह भरी और कहा, हरीज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, किंतु मुझे लगता है कि अच्छा होगा यदि मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाऊं। एक शाम जब मैं कंधार की एक संकरी गली में अकेला घूम रहा था, अचानक छोटे कद के व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी केवल एक आंख और एक हाथ था। मुझे गली में खींचते हुए वो एक घुमावदार सीढ़ियों से नीचे ले गया। वहां घुप अंधेरा था। पत्थरों की उबड़ खाबड़ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने उन रहस्यों के बारे में अनुमान लगाने लगा जो अब खुलने वाले थे। तहखाने में ले जाकर मुझे एक अंधेरी ठंडी कालकोठरी में धकेल दिया गया। अंधेरे में मैंने एक बदरंगी लालटेन को हल्का सा प्रकाश बिखेरते हुए देखा। उसकी टिमटिमाती लौ से निकलती किरणें पत्थर की भुरभुराती छत और दीवारों को रोशन कर रही थी। उस मध्यम प्रकाश में मकड़ी के जाले और लोहे की जंजीरें मनहूसियत से लटक दिख रही थी। वहां एक भी खिड़की या फर्नीचर नहीं था। मिट्टी के फर्श पर 10-12 बूढ़े, गंदे फटे कपड़े पहने एवं सिर पर साफा बांधे नंगे पैर बैठे थे। उन्होंने काले ढेर के चारों ओर झुंड बनाया हुआ था। वो क्या था? जब मेरी आंखें अंधकार में देखने की अभ्यस्त हुई तो मैंने देखा कि वो लगभग 200 किलो अफगानी काली हशीश का ढेर था। यूरोप में मुझे बताया गया था कि ये हशीश विश्व की सबसे महंगी और नशीली हशीशों में से एक है। वे गरीब बूढ़े निरंतर उस ढेर में से टुकड़े तोड़कर हथेली के आकार की पेड़े बना रहे थे ताकि उनकी तस्करी आसानी से हो सके। मुझे लाने वाला व्यक्ति मुझे एक किनारे पर छोड़कर उनके साथ बैठकर हशीश के पेड़े बनाने में जुट गया। कितना आश्चर्यकारक है ये, मैंने सोचा। क्या कर रहा हूं मैं यहां? कोशिश करने पर भी मैं बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। तब एक आदमी खड़ा हुआ और उसने एक मशाल जलाई। फिर उसने कमरे में एक और ऐसे कदम बढ़ाया मानो एक बड़ा पुरोहित वेदी की ओर बढ़ रहा हो। वहां पर उनका पूजनीय देव विराजमान था, एक विशाल हुक्का। उस आदमी ने आगे बढ़कर हुक्के के मुंह में कई किलो हशीश की भेंट चढ़ाई और विधिवत तरीके से उसे अग्नि से प्रज्वलित किया। तभी एक और व्यक्ति उठा और उस हुक्के की लंबी घुमावदार नली को मुंह में लेकर अपनी पूरी शक्ति से कश लगाया। वो तब तक कश खींचता रहा जब तक उसके फेफड़े पूरी तरह से भर नहीं गए। तब नली से मुंह हटाकर उसने अपनी सांस छोड़ दी एक और कश भरने के लिए। बार बार वो खींचकर हशीश के धुएं के कश लेने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शीघ्र ही नली से धुएं का एक घना बादल उमड़ने लगा। फिर भी वो दम मारता रहा। ये अतिमानवीय था। जब वो अतिमानवीय सीमाओं से भी परे चला गया तो उसके फेफड़ों ने विद्रोह कर दिया। धरती पर गिरकर वो अनियंत्रित रूप से हिचकोले खाने लगा, इतनी जोर से खांसते हुए कि मुझे लगा कि उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी। इसी बीच बाकी सभी बेपरवाही से हशीश के पेड़े बनाने में लगे रहे। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उस मनहूस हुक्के के पास गया और उसी विधि को दोहराया। वो कश पर कश लगाता गया, शायद 20 बार। नली से धुआं उमड़ रहा था और अंततः चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर वो व्यक्ति भी धरती पर गिर पड़ा। लोटपोट होते हुए वो भी बिना रुके खांसने लगा। कमरे में बैठे हर व्यक्ति ने इस अविश्वसनीय प्रसंग को दोहराया। अब वे अपनी खांसी पर नियंत्रण पा लेते तो वापस जाकर अपने भाइयों के साथ मिलकर पेड़े बनाने लगते और हुक्के के लिए अगले शिकार के लिए रास्ता छोड़ देते। हर व्यक्ति की बारी अनेक बार आई और सर्वभक्षी हुक्का किलो पर किलो अफीम और एक ऊपर एक नशेड़ी का भक्षण करता रहा। मैंने सोचा, इन बूढ़े अफगानी लोगों ने तो जैसे नशे की कला में ऊंची डिग्री प्राप्त की है। इनकी तुलना में पश्चिम के डिंगे मारते हिप्पी मुश्किल से नर्सरी कक्षा में चुन्नू मुन्नु हैं। हशीश के धुएं के घने बादल उस बंद कोठरी में छा गए। मेरी आंखें जलने लगीं। उस हवा में सांस लेने मात्र से ही मुझे इतना नशा चढ़ गया जितना जीवन में कभी ही नहीं चढ़ा था। अब मेरी बारी आई। वे मुझे हुक्के तक खींच कर ले गए। क्या मैं उस हुक्का रूपी देवता को चढ़ाई जाने वाली अगली बलि था? हुक्के की बड़ी नली से हशीश के धुएं की मोटी लहरें निकल रही थी। कैसे उसका सामना किया जाए? मैं डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। मैंने नली तक पहुंचकर कश मारना शुरू भी नहीं किया था कि धुएं की लहरों ने मेरे फेफड़ों पर ऐसे धावा बोला जैसे सांप चूहे के बिल में घुसता है। मैं धरती पर गिर पड़ा और बेहाल हो लौटने लगा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं इतनी जोर से खांसा कि लगा मानो मेरे फेफड़ों और गले के चिथड़े उड़ जाएंगे। दूसरी ओर अनुभवी नशाखोर अपने घुटने पिटते हुए जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। यहां मैं था, एक युवा अमरीकी, उम्र में इनका एक तिहाई, और मैं हुक्के तक भी नहीं पहुंच पाया था। ये उनका हर रात का मनोरंजन था, परंतु मुझ पर बहुत भारी पड़ा। मैं घिसटता हुआ अपने कोने तक पहुंचा और दीवार का सहारा लेते लेते गिर पड़ा। मेरे हाथ पैर शिथिल हो गए। धुएं के विशाल बादलों में अजीबोगरीब दृश्य प्रकट होने लगे। हर ध्वनि एक अद्भुत संगीत बन गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मेरा मन काल और दिशा से परे किसी बवंडर में चक्कर पर चक्कर खा रहा है। मैं हिलने डुलने में अक्षम था और जाने का कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। आंसुओं से भरी मेरी आंखें जलने लगी। दृष्टिभ्रम से मुझे ऐसा लगा कि हुक्के से निकलती धुएं की लहरें भूत प्रेतों की आकृतियों में परिवर्तित होकर मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मुझे वे दिन याद आने लगे जब मैं नशे के माध्यम से राहत, सुख और यथार्थ को पाने का प्रयास किया करता था। क्या मिला मुझे? मैंने उनमें उन शराबियों और नशेड़ियों की छवियां उभर आईं जिन्हें मैंने अमरीकी शहरों की बस्तियों में देखा था। मेरे कॉलेज के साथी मादक पदार्थों के चंगुल में निस्सहाय गुलाम बन गए थे। मुझे एक भली लड़की का स्मरण हो आया जो अत्यधिक मात्रा में LSD का सेवन करने से पागल हो गई थी। एक प्रतिभावान छात्रा, अब वो एक पंछी की तरह चहचहाने लगी थी। उसे देख सभी का जी बहलाता, जब तक कि उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर उड़ने का प्रयत्न नहीं किया। एक वर्ष पश्चात भी वो मानती थी कि वो एक पंछी है, लेकिन अब वो पागलखाने के पिंजरे में चहचहाती है। मैंने भी समय समय पर नशे के माध्यम से शांति की खोज की थी। मुझे ये विश्वास दिलाया गया था कि रासायनिक अथवा वानस्पतिक उत्तेजक पदार्थ उच्च आध्यात्मिक स्थिति का बोध करा सकते हैं, लेकिन शीघ्र ही मुझे उनसे होने वाले दुष्परिणाम समझ में आने लगे। ये एक कृत्रिम स्थिति थी जो मुझे अपने हृदय की लालसा से और दूर खींच रही थी, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। कंधार की उस हशीश कोठरी में यातनाओं के बादल में डूबे हुए हृदय से एक प्रतिज्ञा उभर आई, हे भगवान, मैं जीवन में अब कभी कभी भी नशा नहीं करूंगा। लड़खड़ाता हुआ मैं कमरे से बाहर गली में आ गया और सिर अब भी चकरा रहा था। कंधार में आखिर शाम को मैं मध्यम रोशनी में नहाई एक छोटी चाय की दुकान में स्थानीय लोगों के साथ उकड़ू बैठा था। अचानक सभी का ध्यान एक अंधे लड़के की ओर गया। वो लकड़ी का एक पुराना एक तारा लेकर लड़खड़ाते हुए दुकान में आया। लगभग 16 वर्ष के उस बालक ने अन्यों के समान ही गंदे फटे कपड़े पहने थे जो उसके दुबले शरीर पर ढीले ढीले लग रहे थे। मेरा हृदय कांप गया। उसकी विकृत आंखों पर कुछ भी आवरण नहीं था। अत्यधिक दरिद्रता में भी उसके मुख पर एक उल्लसित मुस्कुराहट थी और वो अपने हृदय की गहराइयों से अल्लाह की प्रशंसा में गीत गाते हुए एक तारा बजा रहा था। उसकी मधुर आवाज और सच्ची भावना ने उस छोटी सी दुकान में बैठे हम सभी 6 लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस अंधे बालक के सहज हर्षोल्लास ने उस कमरे को अलौकिक आनंद से भर दिया। एक घंटे तक वो एक तारा बजाते हुए ईश्वर की स्तुतियां गाता रहा। मैं द्रवित हो गया। वो बेघर, अनपढ़, नेत्रहीन और निर्धन था, फिर भी इस दीनहीन अवस्था में वो अपने हृदय में पाई सुख की अतुल संपत्ति के गीत गा रहा था। वो संपत्ति थी भगवान के प्रति उसके प्रेम की। कंधार मेरे लिए असाधारण रहा। एक नेवले से मैंने धैर्य सीखा। हशीश के नशेबाजों के अड्डे में से मद्य निषेध और एक अंधे बालक से आध्यात्मिक आह्लाद। इस नगर से प्राप्त सभी शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उसे अलविदा कहा। यहाँ पे 10वां अध्याय समाप्त होता है।